नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापानशालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्व कृष्ण प्रियवरीयसि प्रेम भक्ति प्रदे देवी श्रीराधिका त्वं नमोस्तुते। बोलो श्री ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। तो स्वागत है आप सबका इस ब्रज महिमा माधुरी की प्रवचन श्रृंखला में, और आज हमारा चौथा दिन है और आज हम परिक्रमा करेंगे कुमुद वन से लेकर बहुला वन तक। तो बहुला वन के मार्ग पर हमें कई सारे स्थान देखने के लिए मिलेंगे। तो उसमें से सबसे पहला स्थान है जिसको उस पार कहा जाता है, फिर उसके बाद से मानको नगर है, फिर लगायो है, उसके बाद फिर गणेशरा यानी गंधेश्वरी वन कहा जाता है, फिर दथिया है, फिर आयोरे है, फिर गौराई है, फिर छटीकरा और फिर गरुड़ गोविंद के दर्शन करके हम फिर बहुला वन पहुंचेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की चतुर्थ दिन की हमारे जो परिक्रमा है उसके लिए। तो जैसे ही कुमद वन से हम आगे निकलते हैं और मथुरा से लगभग 6 मील की दूर और शंतनु कुंड से 2 मील की दूर पे मथुरा के पश्चिम में एक स्थान है जिसको दथिया कहा जाता है। इसी स्थान पे भगवान ने दंतवक्त्र का वध किया था। जब भगवान पद्म पुराण में कहा गया है कि सूर्य ग्रहण के समय भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए सारे ब्रजवासीगण नंद बाबा सहित अन्य गोपगण और श्री कृष्ण की जो प्रियतम गोपियां हैं वे कुरुक्षेत्र पहुंची और वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने उनको आश्वासन दिया कि मैं शीघ्रातिशीघ्र पुनः वृंदावन आ जाऊंगा। गोप गोपियां नंद बाबा के साथ बड़े आनंद से ब्रज में लौट आए, लेकिन वे उस समय गोकुल महावन वापस नहीं गए बल्कि वे दतिहा के पास यमुना के उस पार ही भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। यानी यमुना के वे उस पार नहीं गए, पूर्व की ओर नहीं गए बल्कि पश्चिम में ही रहे, और इसलिए इस स्थान को भी उस पार ही कहते हैं क्योंकि यहीं पे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा की थी। और जहां पे वे प्रतीक्षा कर रहे थे, जहां पे वे रहे, उसी स्थान को आज मगेरा या मघेरा नाम से जाना जाता है, और जो उसके पास वाला दूसरा गांव जो है उसको उस पार कहते हैं। जब भगवान ने शिशुपाल को मारा, उसको मारने के पश्चात वे मथुरा आए, आकर फिर वे ब्रजवासियों को मिलने के लिए आगे चले, और उसी समय उन्होंने यहीं पे दतिहा ये जो स्थान है यहीं पे उन्होंने दंतवक्र का वध किया और फिर जाके वे अपने माता पिता एवं सारे ब्रजवासियों से मिले। और यहां दंतवक्र का वध होने के कारण इस स्थान को दतिहा कहा जाता है। हम जानते हैं कि मध्यकालीन युग में भारतवर्ष पे कई आक्रांताओं ने आक्रमण किए और खास करके यवन जब वे भारत पे आक्रमण किए तो काफी हद तक उन्होंने कई गांवों के, शहरों के, नगरों के नाम बदल दिए। ऐसे ही जो आगे हम जाने वाले हैं जिस गांव में, जो वर्तमान में अलीपुर नाम के नाम से जाना जाता है, वास्तविकता में उसका नाम है अयोरे। क्यों इसका नाम अयोरे पड़ा? तो जब ब्रजवासियों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उनको मिलने के लिए आए हैं, तो सारे ब्रजवासी प्रसन्नता से बोलने लगे, आयोरे आयोरे आयोरे। तो यही वो स्थान है जहां से उन्होंने अति उल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ भगवान के आने की खबर सबको दे दी कि आयोरे आयोरे आयोरे। फिर इसके आगे का जो गांव है उसको गोराई या गौरवाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गौरवाई इसको? क्योंकि जब बाबा नंद बाबा कुरुक्षेत्र से वापस आए तो आते समय इसी गांव में, इस गांव के जो प्रधान थे उन्होंने बड़े आदर के साथ, या इस गांव के जो जमींदार थे उन्होंने बड़े आदर और गौरव के साथ नंद बाबा का गौरव किया, उनको सम्मान किया, उनको यहीं पे ऊंचे ऊंचे प्रकार के उपहार भी प्रदान किए। और इसी स्थान में होने के कारण इस स्थान का नाम गोराई होगा। वैसे देखा जाए तो ये स्थान गोकुल से ईशान कोने में 3 मील दूर पे स्थित है और वर्तमान में इसको गुरु के नाम से जाना जाता है। मथुरा मंडल परिक्रमा में एक मथुरा मंडल महात्म्य नाम का ग्रंथ है, उसमें कई सारे इन लीला स्थलियों के पुराने नाम दिए और वहां पे दिशा और अंतर बताने के कारण आज वर्तमान काल में उन गांवों के जो बदले हुए नाम है उससे हमें वो स्थान मालूम पड़ता है, अन्यथा बहुत कठिन है। क्योंकि इन यवन आक्रांताओं के कारण देश के कई सारे ग्रामों और नगरों के नाम बदल चुके हैं, लेकिन जो शाश्वत है वो शाश्वत है। इसलिए भगवान के जो शुद्ध भक्त है वे जब उन स्थानों पर पहुंचते हैं तो भगवान की दिव्य लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होती है और उन लीलाओं के कारण उस समय में उस गांव का नाम क्या था वो हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवत धाम की अगर हमें परिक्रमा करनी है तो किसी प्रणयी भक्ति के भक्त के साथ ही जाना चाहिए। नहीं तो जैसे हम अलीपुर जाएंगे और फिर सोचेंगे, अरे ये कौन सा गांव है, यहाँ पे क्या भगवान की लीला है, वृंदावन में ये स्थान है और इसका नाम अलीपुर है। लेकिन जब वहां पे किसी शुद्ध भक्त के साथ जाते हैं और वे लीला स्मरण से हमें बताते हैं कि ये कौन सी लीला यहाँ पे हुई थी, तो उस लीला के अनुरूप उस गांव का नाम क्या था वो हमें मालूम होता है। तो आइए फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे ही हम आगे जाएंगे तो मथुरा से 4 मील और वृंदावन से लगभग 2 मील स्थान पे एक स्थान है जिसको कहा जाता है छट्टी करा। आज इसको छट्टी करा कहा जाता है, ये अपभ्रंश है संस्कृत शब्द का। और वो शब्द क्या है? तो वो है शकटी करा। शकटी करा यानी शकटी के आकार का जो है, यानी षटकाकार। गोकुल महावन में आसुरों का उत्पात देखकर नंद बाबा ब्रजवासियों के साथ यहां पे आ गए इसी स्थान। तो उस समय ब्रजवासियों ने अपने लाखों षटकों से, बैलगाड़ियों से अर्धचंद्राकार रूप में अपना निवास स्थान स्थित किया और उसी के कारण इसको शकटाकार या छट्टीकार के नाम से आज ये प्रसिद्ध है। और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब यहां पे स्थित थे तभी वे वृंदावन एवं आसपास का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में गोवत्स और गोचारण के लिए जाते थे। और यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की जो रासादी लीलाएं हैं उनका संपादन किया। और उस समय वृंदावन इतना समृद्ध शहर नहीं था जैसे आज हमें दिखाई देता, जैसे शहर नहीं नगर, जितना आज समृद्ध नगर दिखाई देता है बड़े बड़े इमारतों के साथ, आश्रमों के साथ, मंदिरों के साथ, उस समय नहीं था। बल्कि वहां पे क्या था कि नाना प्रकार के कुंज थे, लताएं थे और रमणीय वनों से वो सुसज्जित था। आज बहुत ही मुश्किल से आपको कुछ कुंज या अगर सेवा कुंज निधि वन छोड़ा तो वृंदावन में आपको कहीं पे आज इतनी लताएं या रमणीय वन या कुंज नहीं दिखाई देते। लेकिन यही वो स्थान है जहां पे भगवान ने बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं की है। छटीकरा के पास ही वो जो दिल्ली आगरा का महामार्ग है, वहीं पे हम अगर दिल्ली की तरफ अपना मुख करके खड़े रहते हैं महामार्ग पे, तो बाएं हाथ से जो मार्ग राधा कुंड की ओर जाता है उसके दूसरे बाजू में दाहिनी ओर थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक मार्ग अंदर से वृंदावन की तरफ चलता है जिसको आज वीआईपी रोड कहा जाता है, तो उसी पे ही गरुड़ गोविंद जी का सुंदर मंदिर है। यहां पे आपको एक विशेष भगवान का रूप देखने के लिए मिलेगा। यहां पे भगवान श्री कृष्ण विष्णु रूप में है और गरुड़ की सवारी कर रहे हैं। तो कई कथाएं बताई जाती है इस लीला के बारे में कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब गोचारण करते हुए सखाओं के साथ यहां आ गए और कई प्रकार के सुंदर लीलाएं क्रीड़ाएं वो अपने मित्रों के साथ सखाओं के साथ यहां पर किया करते थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि श्रीदामा सखा को गरुड़ बनाया और उसके ऊपर, उसके पीठ के ऊपर नारायण का रूप धारण करके वे सवार हो गए। तो यहां पे आपको सुंदर गरुड़ बने हुए श्रीदामा जी और श्री गोविंद जी का सुंदर दर्शन होता है। कल्पभेद से दूसरी लीला बताई जाती है कि रामावतार में जब श्री रामचंद्र जी मेघनाथ के द्वारा नागपाश से बंध गए और ऐसे लग रहा था कि लक्ष्मण जी और राम जी दोनों भी इस पाश के कारण असहाय हैं, तो उसी समय देवर्षि नारद से संवाद पाकर गरुड़ जी वहीं उपस्थित हुए और उनको देखने के पश्चात जिन नागों ने भगवान को पाश बना के बांध के रखा था वे नाग प्राण के भय से भाग गए। तो गरुड़ जी के मन में भगवान श्री रामचंद्र जी के लीला के प्रति या भगवान के सामर्थ्य के प्रति थोड़ा सा संदेह निर्माण हो गया। वे भगवान की भगवत्ता में ही संदेह करने लगे। ऐसे जब उनके मन में चल रहा था तो पीछे काकभूषण जी बैठे थे। भगवान श्री रामचंद्र जी के सारे लीलाओं के अगर कोई साक्षी है तो वह काकभूषण जी। तो फिर काकभूषण जी उन्होंने थोड़ा सत्संग किया और गरुड़ जी को समझाया कि आप अच्छी तरह से समझ लो कि भगवान भगवान है, वे किसी भी रूप में आए उनकी भगवत्ता कभी कमी नहीं होती है। और जैसे आप देखिए लक्ष्मण जी जो साक्षात अनंत शेष है उनको कौन बांधेगा, कौन से सर्पों की इतनी क्षमता है कि उनको बांधे, लेकिन ये भगवान की एक मनुष्य रूप लीला है। इस लीला में वे अपने भक्तों की महत्ता भी दिखाना चाहते हैं। गरुड़ जी की महत्ता दिखाने के लिए खुद साप सर्प पाश में बंध गए और गरुड़ जाने के बाद सारे सर्प निकल गए। अच्छा, अब गरुड़ जी ने काकभूषण जी के साथ जो सत्संग किया उसका परिणाम यह हुआ कि वे समझ गए उनकी क्या त्रुटियां हैं। और फिर उनका संदेह कब दूर हुआ? तो भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई। जब वे आए और देखा भगवान श्री कृष्ण को, नर्वत लीला कर रहे, लेकिन कितनी सुंदर और रमणीय लीला है। वे स्वयं कृष्णावतार में भगवान की लीला यहां पे देखने के लिए, लीला देखने के पश्चात भगवान का सुंदर दर्शन किया। इसी स्थान पे गरुड़ जी ने गोविंद का दर्शन किया, इसलिए इसको गरुड़ गोविंद कहा जाता है। फिर इस गरुड़ गोविंद से जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो यहां पे एक गांव है जिसका नाम है गणेशरा। वास्तविकता में इस गांव का नाम पुराणों के अनुसार गंधेश्वरी है। और इसी स्थान पे जब भगवान अपने सखाओं के साथ गोचारण लीला करने आते थे, तो यहां के मिट्टी को एक अनोखी गंध दी। उस गंध को वो अपने शरीर पे, उन ग्रंथ द्रव्यों को अपने अंगों पे वे धारण करते थे। और कहते हैं यहां सहेलियों के साथ छिपी हुई जो श्रीमती राधा रानी है, राधा रानी के शरीर का जो अंगराग है, उसका जो गंध है, या राधा रानी का जो एक नैसर्गिक स्वाभाविक गंध जो है, वो भगवान श्री कृष्ण को उनके प्रति आकर्षित करता था। और फिर उसके कारण होता क्या था, जैसे वर्णन आता है राधा रस सुधा निधि में, वे कहते हैं यस्या कदा वे वसनांचल लेखिलनोत्था धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगिंद्र दुर्गमगतिर्मधुसूदनोपे तस्या नमोस्तोस्तु वृषभानुभवो दिशेपि। इसका अर्थ है कि श्रीमती जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण का जो भाव वहां पर उत्पन्न हुआ है, उस भाव के कारण उनके व्यक्तित्व में जो बदल आया है, उनकी चेष्टाओं में जो बदल आया है, उसका वर्णन करते समय कहते हैं वे वंशी करान्यपतितास्खलितं शिखंडम भ्रष्टश्च पीतवसनं व्रजराजसूनो यस्या कटाक्षशरगात विमूर्छितस्य ताम्राधिकां परिचरामि कदारसेन। वे कहते हैं यहां पे देखिए श्रीमती जी को देखकर उनके हाथों से बंशी गिर गई, मोर मुकुट भी श्री राधिका के चरणों में गिर गया, यहां तक कि वे स्वयं मूर्छित हो गए। और इसीलिए यह स्थान गंधेश्वरी कहलाता है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का दूसरा नाम है गांधर्विका, और उन्हीं के नाम के अनुसार यहां गांधर्वी कुंड है। आज भी श्री राधा कृष्ण के विलास की ध्वजा फहरा रहा है, और गंधेश्वरी का अपभ्रंश ही वर्तमान समय में गणेशरा नाम से प्रसिद्ध है। तो आइए इस लीला स्थली को प्रणाम करके आगे हम चलते हैं। जब हम आगे जाते हैं तो पश्चिम मथुरा के पश्चिम में 2 मील तथा शंतनु कुंड से ईशान कोण में 1 मील की दूरी पर एक गांव है जिसको खेचरी कहा जाता है। खेचरी का तात्पर्य है खे यानी आकाश और चरी यानी जो विचरण करने वाली है। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला में ऐसी कौन सी राक्षसी है जिसको खेचरी कहा जा सकता है? तो वो है पूतना, क्योंकि पूतना आकाश से गमन करती थी, इसलिए उसको खेचरी कहा जाता है। और वो इतनी क्रूर और शक्तिशाली थी कि कंस ने उसको अपनी बहन मान लिया और कंस के ही अनुरोध से वो अलग अलग रूप धारण करके ब्रज के जो नवजात शिशु बालक थे उनको उठा के ले जाती थी और अपना उनको या तो मार डालती थी या फिर अपना दूध जो विष से भरा हुआ वो पिला के उनका उनके प्राण हरण कर लेती थी और उसी बच्चों का रुधिर और मांस भक्षण करती थी। इतनी दुष्टा थी और ऐसी ये राक्षसी एक सुंदर स्त्री का वेश करके जब नंदा बाबा के भवन में आ पहुंची और लाला को उसने उठाया और अपने स्तन को लगा दिया तो लाला ने वो विष के साथ साथ उसके प्राणवायु भी हर ली और उसके ऊपर इतनी अहितु की कृपा कर दी कि उसको धात्रोच्चतम गति ही अपने धाम में धात्री की गति प्रदान कर दी। तो ऐसे दयालु है हमारे भगवान। तो ये जो स्थान है ये है खेचरी जहां पे पूतना निवास करती है। आइए फिर यहां से एक मैल आगे और चले जाते हैं और जाने के पश्चात हम पहुंचेंगे शंतनु कुंड। तो नाम से ही आपको स्मरण होगा कि शंतनु जो कुरुवंश के बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे और उनका आचरण जो था वो ऋषि तुल्य था। बड़े ही न्यायी थे, सत्य धर्मी थे, धर्मात्मा थे और अपने कार्य में अति कुशल भी थे। अगर आपने महाभारत पढ़ा हो या टीवी पे देखा हो या महाभारत की कथाएं सुनी हो तो महाराज शंतनु जो थे वे इसी स्थान पे आकर तपस्या किया करते थे। वर्तमान में इस स्थान का नाम सतोहा है, सतोहा, और ये मथुरा से लगभग 3 मील के दूर पे गोवर्धन मार्ग पे आता है। जब आप मथुरा से गोवर्धन की ओर चलेंगे उस मार्ग में 3 मील की दूरी पे ये शंतनु कुंड और शंतनु विहारी जी का मंदिर है। ये वही स्थान है जहां पे महाराज शंतनु आके तपस्या करते थे। यहीं पे शंतनु विहारी जी भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो उस पार में जो एक धीवर रहता था जिनकी एक कन्या थी सत्यवती, वो बहुत ही रूपलावण्यवती थी और उसको देखने के पश्चात शंतनु महाराज के मन में इच्छा हो गई कि इसे पत्नी रूप में हमें पाना चाहिए। तो जाके उन्होंने धीवर राज जो थे उसके साथ बात की। तो ये धीवर दाशराज जो था उसके द्वारा ये पोष्य कन्या थी, ये उसकी कन्या नहीं थी बल्कि उसे ये मत्स्य के या एक मछली के गर्भ में से इसको प्राप्त हुई थी। तो उसके शरीर में मत्स्य की गंध थी पहले, लेकिन जब व्यासदेव जी का जन्म हुआ उसके पश्चात तो उसका गंध चला गया और वो सत्यवती नाम से जानी गई। तो वो आपको याद होगा कि उस दाशराज ने कहा कि ठीक है आप मेरे पत्नी को मेरे पुत्री को पत्नी बना सकते हो लेकिन मेरी एक शर्त है, उसको आपको स्वीकारना पड़ेगा कि मेरी पुत्री से जो संतान जन्म लेगी वही आपके राज्य का राजा बनेगी। तो शंतनु जी सोचने लगे कि ये कैसे संभव है क्योंकि मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, उनकी पहली पत्नी गंगा जी से उत्पन्न जो देवव्रत है वो उनका बहुत ही सक्षम पात्र और अजेय योद्धा उनका पुत्र है, तो उसके होते हुए ये दूसरे पत्नी के बच्चे कैसे राजा बन सकते हैं। तो वे वहां से लौट आए। जब हस्तिनापुर लौट आए तो बहुत उदास से रहते थे, हालांकि अपना दैनंदिन कार्य कर रहे थे, लेकिन भीष्म देवव्रत के दृष्टि में ये बात आई कि कुछ तो हुआ है जिसके कारण मेरे पिताजी बहुत दुखी है, कुछ तो व्यथा है जो उनके हृदय में उनको वेदना दे रही है। तो उन्होंने सारथी से पूछा, तो सारथी ने सारा प्रसंग बताया कि दाशरथ ने जो बोला था। फिर भीष्मदेव स्वयं आए, उन्होंने दाशरथ को अच्छी तरह से समझाया और वचन लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और आपके जो पुत्र है मत्स्य गर्भ गंधा के गर्भ से जो पुत्र जन्म लेंगे वही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। और तत्पश्चात फिर महाराज शंतनु की मत्स्य गंधा के साथ विवाह वगैरह हुआ। तो शंतनु कुंड यहीं पे महाराज शंतनु जी आके रहते थे। जैसे हस्तिनापुर में उनका निवास था, वैसे भी एक निवास स्थान उन्होंने यहां पे शंतनु कुंड पे बनाया था। और कहा जाता है कि आज यहां पे जिनको संतान की कामना है, जिन्हें संतान प्राप्ति होने के लिए कठिनताएं जा रही है, ऐसे लोग यहां पे आते हैं और शंतनु विहार जी जो है उनकी पूजा करते हैं। और खास करके वो माता है जिनको पुत्र की इच्छा है, संतान की इच्छा है, वे इस शंतनु कुंड में आके स्नान करके फिर शंतनु विहार जी का दर्शन लेती है। और शंतनु कुंड के बीच के टीले में जो शंतनु कुंड के बीच के टीले में जो शंतनु जी बिहारी का मंदिर है उसके पीछे वे गोबर की सतिया बनाकर पूजा कर लेती है। तो आइए दर्शन करते हैं शंतनु बिहारी जी का और प्रार्थना करते हैं उनसे कि हे भगवान, कि आपकी कृपा से ही उत्तम संतान प्राप्ति होती है, तो आप ही हमें आपके उत्तम संतान बनाएंगे। उसके लिए जो आवश्यक गुण है, जो मति आवश्यक है, वो हमें कृपा प्रदान करें, क्योंकि भगवत कृपा के बिना इसे प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ही कठिन है। बोलो शंतनु बिहारी भगवान की जय। तो इस शंतनु कुंड से जब हम राधा कुंड की ओर चलते हैं तो मथुरा से पश्चिम में लगभग 7 मील की दूरी पर राधा कुंड एवं वृंदावन के मध्य में स्थित एक बहुत ही सुंदर वन है जिसको बहुला वन कहा जाता है। ये स्थान अभी भी बहुत सुंदर और रमणीय है, अभी भी थोड़ा वन के जैसा ही है। ये भगवान की एक सखी थी, गोपी थी, जिनका नाम था बहुला। ये उनका निवास स्थल है। बहुला श्रीहरे पत्नी तत्र तिष्ठति सर्वदा। वर्तमान में इस स्थान का नाम है बाटी और पहले था बहुला वन। तो यहां कहते हैं कि बहुला श्रीहरे पत्नी तत्र तिष्ठति सर्वदा। ये वो स्थान है जहां पे बहुला नाम के भगवान श्रीहरि की जो पत्नी है जो सर्वदा यहां पे निवास करती है। यहां दो कुंड है, एक है संकर्षण कुंड और दूसरा है मानसरोवर। कहा जाता है कि कभी श्रीमती राधा रानी मान करके कुंज में छिप गई और कृष्ण ने उनके विरह में कातर होकर सखियों के द्वारा अनुसंधान कर बड़ी कठिनता से उनका मान भंग किया था। और जनश्रुति है कि जो लोग जैसी कामना कर उसमें स्नान करते हैं उनके मनोरथ सफल हो जाते हैं। और कुंड के तट पर स्थित मंदिर में श्री कृष्ण बाघ गाभी वत्स और एक ब्राह्मण की मूर्ति विराजमान है। और लोककथा के अनुसार किसी समय बहुला नाम की एक गाय इस सरोवर में पानी पी रही थी। उसी समय एक भयंकर बाघ ने उस पर आक्रमण करके उसे पकड़ लिया। लेकिन वो जो गाय जो थी वो अपने भूखे बछड़े को दूध पिलाकर लौट आने का उसने उस बाघ को आश्वासन दिया। और उसके जो स्वामी थे एक ब्राह्मण, क्योंकि एक ब्राह्मण की गाय थी, वो उस ब्राह्मण के पास लौट गए। और उसने अपने द्वारा दिए गए वचन को सुनाकर अपने बछड़े को भरपेट दूध पी लेने के लिए कहा। और जब उस बछड़े ने सुना कि मेरी मां को कोई बाघ खाने वाला है, तो उसने दूध पिया नहीं और उसने हट किया कि हे मां मैं तुम्हारे साथ ही आऊंगा। और जब ये दोनों का संवाद चल रहा था तो जो ब्राह्मण था जिनकी ये गाय थी वो उसे सुन रहा था। तो उसने सोचा कि ये दो मां बेटों में इतना प्रेम है तो क्यों ना मैं स्वयं जाकर उस बाघ का भोजन बन जाऊं और बाघ से मैं विनती कर लूं कि ये दोनों को छोड़ दे। तो ये तीनों एक साथ जाके उस बाघ के सामने खड़े हो गए। तो बाघ सोचने लगा, मनुष्य तो दुबला पतला है और बछड़ा तो बहुत छोटा है, इससे अच्छा है कि मैं गाय को ही खा लूं। और जैसे ही गाय को खाने ही वाला था उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे, क्योंकि नमो ब्रह्मण्य हिताय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। भगवान श्री कृष्ण कौन है? तो गायों और ब्राह्मणों के हितेशी है। और जब देखा उन्होंने कि गाय और ब्राह्मण दोनों संकट में है तो वे स्वयं आके वहां पर प्रकट हो गए। और भगवान श्री कृष्ण को देखने के पश्चात उस बाघ का हृदय जो है वो बदल गया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह ब्राह्मण गाय और बछड़े को लेकर सकुशल घर लौट आया। बहुला वन यह बहुत ही बड़ा वन है और उसी के अंतर्गत ही श्री राधा कुंड आता है और इसीलिए बहुला अष्टमी के दिन श्री राधा कुंड में स्नान की विधि है तथा उस दिन स्नान का विशाल मेला लगता है। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वन भ्रमण के समय यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर विवल हो गए थे। चैतन्य चरितामृत में इसका मनोरम हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बहुला वन में प्रवेश किया उस समय वहां पर चलती हुई सुंदर सुंदर गायों ने चरणा छोड़कर उन्हें घेर लिया। वे प्रेम में भरकर हुंकार करने लगी तथा उनके अंगों को चाटने लगी। गौओं के प्रेम भरे वात्सल्य को देखकर महाप्रभु जी के हृदय में प्रेम की तरंगे उठने लगी। वे पूरी तरह से भावाविष्ट हो गए और कुछ स्वस्थ होने पर उनकी लोरियों को सहलाने लगे। गौवे भी उनका संग नहीं छोड़ना चाहती थी किंतु चरवाओं ने बड़े कष्ट से उन्हें किसी प्रकार रोका। उस समय महाप्रभु कोथाय कृष्ण कोथाय कृष्ण कहकर भावाविष्ट होकर रोदन करने लगे, कहां है मेरे कृष्ण कहां है मेरे कृष्ण। झुंड के झुंड हिरण और हिरणिया एकत्रित हो गई और निर्भय होकर प्रेम से महाप्रभु के अंगों को चाटने लगे। शुक सारी कोयल पपी है भृंग पंचम स्वर में गाने लगे। मयूर महाप्रभु के आगे आगे नृत्य करने लगे। वृक्ष और लताएं पुलकित होकर उठी और अंकुर नव किशल एवं पुष्पों से भरपूर हो गई। वृक्ष और लताएं पुलकित हो उठी, वे प्रेम पूर्वक अपनी टहनी रूपी करपल्लवों से महाप्रभु के चरणों में पुष्प और फलों का उपहार देने लगी। महाप्रभु वृंदावन के स्थावर और जंगम सभी के उच्छ्वासित भावों को देखकर और भी अधिक भावाविष्ट हो गए। जब महाप्रभु जी भावाविष्ट होकर कृष्ण बोलो कहकर उच्च स्वर में रोदन करते, ब्रज के स्थावर जंगम सभी प्रतिध्वनित रूप में उनको दोहराते। महाप्रभु जी कभी कभी हिरण और हिरणियों के गले को पकड़कर बहुत ही कातर स्वर में रोदन करते। वे भी अश्रुपूरित नेत्रों से उनके मुखारविंद को प्रणय भरी दृष्टि से निहारने लगती। कुछ आगे बढ़ने पर महाप्रभु जी ने देखा आमने सामने वृक्षों की डालियों पर शुक सारी परस्पर प्रेम कलह करते हुए श्री राधा कृष्ण युगल का गुणगान कर रही है। तो शुक बोलते हैं मेरे कृष्ण मदन मोहन है, तो सारी कहती है मेरी राधा उनके वाम भाग में है, जब तक अन्यथा केवल मदन ही है। वे है मैं मानती हूं कि वो मदन मोहन है, क्यों मदन को मोहित करते हैं, क्योंकि उनके वाम भाग में मेरी राधा रानी खड़ी है इसलिए। तो शुक कहता है कि मेरे कृष्ण जगत के जीवन है। तो सारी कहती है मेरी राधा उन जीवन की भी जीवन है। फिर शुक कहता है मेरे कृष्ण के सर पर मयूर पंख सुशोभित है। तो सारी कहती है वो अपने सर पे या मोर पंख धारण करते हैं क्योंकि मेरी श्रीमती राधा रानी का नाम उसके ऊपर अंकित है, इसलिए राधा नाम को अपने सर पे उन्होंने धारण किया। फिर शुक कहता है कि मेरे कृष्ण के सिर पर बाई ओर झुका हुआ मोर पंख है। तो सारी कहती है कि वाम भाग में किशोरी जी खड़ी है जिनके चरणों में वो झुकना चाहता है। तो शुक कहता है कि मेरे कृष्ण चंद्रमा है। तो सारी कहती है राधा चांद को पकड़ने की फांद है। शुक ने कहा वृताकल की आवश्यकता नहीं है, दोनों मिलकर युगल किशोर का गुणगान करेंगे। सारी ने कहा मुझे सहर्ष स्वीकार है। गोविंद लीलामृत में ऐसा वर्णन आया है, कहते हैं सौंदर्यम ललनाधिर्दनलम लीलारंभास्तंभिनी तूर्याम कंदुकिताद्रिवर्यमाला सारे पराब्ध गुणा शीलम सर्वजनानुरंजन महो यस्यास्मतं प्रभु विश्वं विश्वजननी कीर्तिरवातता कृष्णे जगन्मोहनम् श्रीराधिकाया प्रियता स्वरूपता सुशीलता नरतन गान चातुरे गुणालीन संपद कविता च राजते जगन्मोहन चित्त मोहिनी वंशीधारी जगन्नारी चित्तहारी ससारिके विहारी गोपजन नारी विरजियान मदन मोहनहा। जिनका अनुपम सौंदर्य असंख्य रमणी समूह के धैर्य धन को अपहरण कर लेता है, जिनकी विश्वव्याख्यात कीर्ति लक्ष्मी देवी को भी स्तंभित कर देती है, जिनका वीर्य गिरिवर गोवर्धन को बालकों का खिलौना बना देता है, जिनके गुण अनंत है, जिनका सरल स्वभाव सर्वसाधारणों को मनोरंजन करता है, जिनकी कीर्ति निखिल ब्रह्मांड का कल्याण साधन करती है, वे हम लोगों के प्रभु जगन्मोहन समस्त विश्व की रक्षा करें। तो गोविंद लीलामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहां पर लिखते हैं कि शुक भगवान के बारे में ऐसा कहते हैं, वे भगवान के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हैं, कहते हैं कि असंख्य रमणियों के धैर्य धन को अपहरण करने वाला भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य है। यानी पतिव्रता गोपियां जो है उनका धैर्य भी नष्ट हो जाता है भगवान का सौंदर्य देखने के दर्शन, और उनकी वीरता ऐसी है कि गोवर्धन को ये बालकों के हाथ का एक खिलौना बना देते हैं। जैसे उन्होंने आयु के सातवें वर्ष में या नौवें वर्ष में अपने बाएं हाथ के करम उंगली पे एक खिलौने जैसे उस गोवर्धन को धारण किया था। और फिर शुक कहता है कि जिनके गुण अनंत है और जिनका स्वभाव एकदम सरल है, जो हर एक के मन को रंजन करता है, आनंद देता है, और जिनकी कीर्ति जिसका गुणगान करने से निखिल ब्रह्मांड का कल्याण साधन होता है, ऐसे जगन को मोहित करने वाले जो है वे मेरे भगवान हैं। और ऐसे जगन मोहन सारे विश्व की रक्षा करें। तो सारी ने इसको प्रत्युत्तर दिया, तो सारी कहती है, हे शुक, श्री राधिका प्रेम सौंदर्य नृत्य, उनकी सुशीलता और संगीत की चातुरी, अखिल गुण संपत्ति कविता अर्थात पांडित्य, जगन मोहन मोहिनी, जगन मोहन मोहन कृष्ण की मन मोहिनी होकर सुशोभित हो रही है। ठीक है, तुम कहते हो कि वह जगन मोहन है, तो हमारी जो है वह राधिका अपने इन गुणों के कारण इस जगन मोहन को भी मोहित करने वाली है। जब चैतन्य महाप्रभु ने शुक और सारी के इस प्रेम कलह को सुना तो इतने विवल हो गए, वे स्थिर नहीं रह सके, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके साथियों ने उन्हें किसी प्रकार सचेत किया और तत्पश्चात वे परिक्रमा में, व्रज की परिक्रमा में अग्रसर हुए। और इसी बाटी गांव से जब हम एक मील दूरी पर चलते हैं तो वहां पर एक शकना नाम का गांव है। इस गांव में बलभद्र जी का सुंदर मंदिर है और यहाँ पे दाऊ जी के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। तो यहां से और आगे जब हम चलते हैं तो एक और एक लीला स्थली है, आज उस गांव का नाम है तोष गांव। यहां पे भगवान श्री कृष्ण का एक गोप मित्र रहता था जिसका नाम था तोष, और वो नृत्य कला में बहुत ही निपुण था, और उसी ने ही भगवान श्री कृष्ण को भी नृत्य कला में निपुण किया था, और उसके नृत्य को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट होते थे। और यहां पे तरस कुंड है जिसके जल को पीकर गौवे ग्वाल बाल कृष्ण और बलराम बड़ा ही संतोष पाते थे, इसलिए इस गांव का नाम ही तोष है, यानी जो तुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। जब इस तोष गांव से 2 मील दूरी पर हम चले जाते हैं तो और एक गांव है जिसका नाम है जखीन ग्राम। अभी पूर्व में इस गांव का नाम था दक्षिण ग्राम। और श्रीमती राधिका जी उनके वाम भाव के लिए बहुत प्रसन्न है, और यही भाव भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक सुखकर है। श्रीमती राधा जी में अखिल नायिकोचित भाव विद्यमान तो है ही, लेकिन कभी कभी विशेष स्थिति में यही दक्षिण नायकोचित भाव का प्रकाश कर किशोरी जी ने श्री कृष्ण को आनंद दिया था, और इसलिए इसका इस गांव का नाम ही दक्षिण ग्राम हुआ है। किसी समय दाऊ जी ने कृष्ण विलास में बाधा देने वाले एक यक्षिणी का वध यहीं पे किया था, और इसीलिए इसे जक्षिणी या जखीन ग्राम भी कहा जाता है। यहाँ पे एक बलभद्र कुंड है जहाँ पे बलराम जी और उनकी पत्नी रेवती जी जो है उनका दर्शन होता है। तो यहां से जब हम थोड़ा आगे चले जाते हैं तो आता है विहार वन। यह श्री राधा कृष्ण की इस युगल जोड़ी की वीरा विहार स्थली है, और विशेष रूप से श्रीमती जी यहां पे भगवान के नृत्य कला की परीक्षा लेती है। इसलिए ब्रज में कहा जाता है, प्रिय को नच मन सिखवत राधा प्यारी, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी, मंथर गति जब ही डर पत, नाचत कुंज बिहारी। मान गुमान की छड़ी लेकर राधा प्यारी प्यारे कुंज बिहारी को नाचना सिखा रही है, किंतु जब राधा प्यारी के निर्देश के अनुसार क्षिप्र गति से नृत्य में कोई त्रुटि आ पड़ती है तो प्यारी जी ने आंखों की प्रखर दृष्टि से उन्हें ताड़न किया। यह विहार कुंड है जिसके निर्मल जल में ग्वाल बालों के साथ कृष्ण बलराम और गौवे मधुर जल पिया करते थे, यहीं पे वे सुंदर जल विहार करते थे, और पास ही अति रमणीय कदंब खंडी भी है जिसमें छोटी सी छतरी में भगवान श्री कृष्ण के चिन्ह दर्शनीय है, चरण चिन्ह दर्शनीय है। तो कदंब खंडी कई जगह पे है, सबसे फेमस कदंब खंडी तो नंदग्राम के पास की है। फिर यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं बसौती और राल ग्राम। तो वर्तमान में बसौती का नाम है बस्ती और राल का वर्तमान नाम है रारगाम। और जिस समय नंद बाबा सपरिवार गोकुल महावन को छोड़कर छटीकरा निवास जब उन्होंने किया तो उस समय उनके मित्र वृषभानु महाराज ने यहां बसौती ग्राम में आके निवास किया था। रावल से वे यहां बसौती में आ गए और गोकुल महावन से नंद बाबा और गोपगन छटीकरा आ गए, और क्योंकि उन्होंने वहां पे वास किया बसती तो उसी कारण उसका नाम बसौती हो गया। और राल जो है वो श्रीमती राधिका जी के बाल्य लीलाओं का स्थान है तथा बसौती उनकी आंशिक पौगंड लीला का स्थान है। फिर बरसाना, जावट और राधा कुंड उनकी किशोर लीला की स्थलियां हैं, किंतु श्री राधा कुंड उनकी परिपूर्ण लीला विलास की परमोच्चतम लीला का स्थान है। और यहां बलभद्र कुंड, बलभद्र मंदिर तथा पासी में कदंब खंडी भी है। तो आप देखिए, जैसे हमने कुमुदवन से शुरू किया, कुमुदवन से लेकर राधा कुंड तक कम से कम 6 बलराम जी के मंदिर हो गए। तो मथुरा के पश्चिम भाग में हम देखते हैं कि बलदाव जी का कितना प्रावल्य है, गुरु तत्व कितना प्रखर है, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु तत्व आगे हमें मिलने वाला है और वे है गिरिराज जी। तो आइए बलभद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आगे निकल जाए। तो आगे एक गांव है अडिंग, ये मथुरा से 9 मील की दूरी पर मुख्य राजमार्ग में तथा गोवर्धन से 4 मील के पूर्व में है। सखाओं के साथ श्री कृष्ण यहां सखियों से अड़कर दान लिया करते थे, इसलिए बोलते हैं अडिंग। यहां पे एक कुंड है जिसका नाम है किल्लोल, और इसी कुंड में श्री कृष्ण और बलराम जी जल कल्लोर जल विहार किया करते थे, इसलिए इसको बोलते हैं किल्लोल। फिर अडिंग से 2 मील दूर अग्निकोण में एक माधुरी खोर है। यह राधा जी की प्रिय सखी माधुरी जी का स्थान है। वाणीकार माधुरी दास जी की यहां भजन स्थली है। यह स्थान बड़ा ही रमणीय है। फिर इसके आगे जब हम जाते हैं बहुलावन से 2 मील दूर पर नैऋत्य कोण में एक ग्राम आता है, उसका नाम है मयूर ग्राम। यहां श्री कृष्ण अपनी प्रिय गोपियों के साथ मयूरों को देखकर मयूर के जैसा ही नृत्य कर रहे थे, और मयूरों ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को अपना एक सुंदर बहुरंगी पंख न्योछावर स्वरूप में दे दिया, जिसे श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। और यहां का जो मयूर कुंड है वो बहुत ही दर्शनीय है। तो इस मयूर गांव के पास ये और एक गांव है, उसका नाम है छकना। जब भगवान गोचारण के समय यहां आते थे तो यहां की गोपियां लाला को और दाऊ जी को जी भर के और पेट भर के छाछ पिलाती थी। तो आज हम छकना में ही अच्छा सा छाछ पी लेते हैं और फिर कल चलते हैं इस ब्रह्मांड का सबसे पावन और भगवान श्री कृष्ण का हृदय जहां पे अटका पड़ा है ऐसे स्थान पे। और वो धाम क्या है, वो स्थान क्या है, पद्म पुराण में वर्णन किया है, यदा राधा प्रिया विष्णु तस्याम कुंड प्रियं तथा सर्वगोपीषु सेवैका विष्णोर अत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी जी श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है, उनकी सर्वाधिक प्राण वल्लभा है, उसी प्रकार राधा जी का प्रिय कुंड भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। तो कल हम चर्चा करेंगे और श्री राधा कुंड की जो महिमा है उस महिमा अमृत का पान करेंगे। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री राधा कुंड की जय, श्री श्याम कुंड की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज यहीं पे हम विश्राम करते हैं और फिर कल चलते हैं अति पवित्र अति उत्तम भगवत अति प्रिय स्थान पे श्री राधा कुंड। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। वृंदावन रम्य स्थान।